الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. جی، تو اس کلاس کے اندر ہم تصحیح بہشتی زیور میں سے پڑھا کرتے ہیں. اس کلاس میں سے ہم تصحیح بہشتی زیور میں سے پڑھا کرتے ہیں، اور آخری کلاس میں ہم نے پیج نمبر 309 کے اوپر حقوق کا بیان پڑھا تھا، جس میں سے والدین کے حقوق اور والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق اور سوتیلی ماں اور بڑا بھائی، ان کے حقوق بھی ہم نے پڑھے تھے. آج جو ہے کتاب الوصیہ والمیراث میں سے شروع کرنا ہے، وصیت اور میراث کے احکام. لیکن اس سے پہلے بس سمجھ لیں کہ سمرائز کرتے ہوئے، خلاصہ کلام بیان کرتے ہوئے، کہ ہم اب تک جو ہے وہ جو حقوق کے بیانات پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پورا کا پورا جو دین ہے، یہ دراصل حقوق کی ادائیگی کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے، حقوق کی ادائیگی کا ہی نام یہ دین ہے. دین کے دو اس طریقے سے آپ حصے کر سکتے ہیں نا، کہ ایک حصہ جو ہے وہ عقائد ہے، عقائد، ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اعمال ہے. عقائد اور اعمال، ٹھیک ہے. تو اب دین پورا کا پورا حقوق ہے، ٹھیک ہے. تو عقائد پھر کیا کہلائیں گے؟ ان حقوقوں کو ماننا، تسلیم کرنا کہ میرے اوپر یہ حقوق آتے ہیں، یہ حقوق آتے ہیں، یہ حقوق آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان حقوق کو بلکہ ماننا کے ساتھ ساتھ پہلے جاننا بھی، ٹھیک ہے. ان حقوق کو جاننا کہ یہ حقوق ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا، ٹھیک ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق نہ جاننا، نہ ماننا سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ماننا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ماننا، اللہ رب العزت کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہ ماننا، اللہ رب العزت کا کوئی باپ نہ ماننا. لائک لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حقوق کا ماننا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے حقوق کا ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کا ادا کرنا ان کو اعمال کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، ٹھیک ہے، زبان سے اس کلمے کی ادائیگی کرنا، پھر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی ادائیگی کرنا، یہ سب اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. جھوٹ نہ بولنا، رائٹ، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حقائق، یعنی یہ حقائق نہیں بلکہ حقوق، ٹھیک ہے. دین پورا کا پورا کیا ہے؟ حقوق کا نام ہے. दीन पूरा का पूरा हुकूक का नाम है। इन हुकूक को जानना और मानना ये अकायद कहलाते हैं, और इन हुकूक को अदा करना ये आमाल कहलाते हैं। ठीक है, तो अकायद और आमाल। ठीक है, तो अब हम क्या करें अगर हमें मालूम नहीं है कि हुकूक क्या हैं, किसके हुकूक क्या हैं और इनको कैसे अदा करना है, तो फिर हम क्या करें, हम इनका इल्म हासिल करें। हम क्या करें, हम इनका इल्म हासिल करें कि अल्लाह ताला के बारे में अकायद क्या होने चाहिए हमारे, ठीक है, और अल्लाह ताला के हमारे ऊपर हुकूक क्या हैं। सही, इल्म हासिल करें। नबी अलैहिस्सलाम के हमारे हुकूक के को हमें कैसा जानना चाहिए, कैसा मानना चाहिए, और नबी अलैहिस्सलाम के हमारे ऊपर हुकूक क्या हैं, इनका इल्म हासिल करें और इनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। ठीक है, उसी तरह से वालिदैन के हुकूक के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। इसमें अच्छी खासी एक बहुत ही मुख्तसर 2-3 सफ़ों के अंदर इन्होंने समरी की हुई है जो हमारे ऊपर इंसानों के हुकूक आते हैं उनकी। ठीक है, तो वालिदैन के हुकूक, उसमें फिर सौतेली माँ, बड़ा भाई, ये सब आ गए उसी के अंदर, क्योंकि बड़ा भाई भी हदीस शरीफ में है कि बाप के दर्जे में है। ठीक है, तो छोटा भाई जो है फिर औलाद के हुक्म में हुआ। फिर उसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक। ठीक है, तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं रिश्तेदारों के हुकूक, उनके लिए आपकी जो है वो दूसरी क्लास है। आज के दिन में जो दूसरा घंटा होता है उसके अंदर औरत के ऊपर हुकूक का बयान है ना, वो तो उसमें आप इसकी तफसीलात जो है वो सुन ही रहे होंगे। तो रिश्तेदारों के हुकूक हो गए, फिर उनमें ससुराली रिश्तेदारों के हुकूक क्या है ये भी यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ससुराली रिश्तेदार। ठीक है, फिर आम मुसलमानों के हुकूक, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हक आता है। माशाल्लाह 39 लिस्ट लिखी हुई है, 39 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमसाये के हुकूक, यानी हमसाया ये मुसलमान भी हो सकता है, ये गैर मुस्लिम भी हो सकता है ना, राइट, ये काफिर भी हो सकता है, ये दहरिया भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन हमसाया है आपका, तो उसके आपके ऊपर क्या क्या हुकूक आते हैं। फिर उसके बाद मुहताज और माजूर के हुकूक। उम्मीद है कि किताब तो सबके सामने होगी, चाहे वो फिजिकल कॉपी में हो चाहे वो ऑनलाइन कॉपी में हो, इस वजह से अगर स्क्रीन शेयर नहीं भी हो रही फिर भी आप किताब में से देख सकती होंगी, लेकिन अगर किताब मौजूद नहीं है तो कम से कम इन हेडलाइंस को अपने पास लिख लें। ठीक है, कि वालिदैन के हुकूक के बाद कौन से हुकूक आए थे, रिश्तेदारों के हुकूक, और रिश्तेदारों के बाद ससुराली रिश्तेदारों के हुकूक। ठीक है, फिर आम मुसलमानों के हुकूक, फिर उसके बाद हमसाये के हुकूक, नेबर्स, फिर उसके बाद मुहताज और माजूर के हुकूक। मुहताज लोग जो के अल्लाह ताला की मखलूक में जिनको अल्लाह ताला ने किसी चीज की कमी दी है, यानी उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज जो है ना वो खराब है या कम है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है। फिर उसके बाद आम इंसान के हुकूक अलग लिखे हैं, मुहताज और माजूर के हुकूक के बाद आम इंसान से हुकूक लिखे हैं, यानी जो कि आपका हमसाया भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमसाये के हुकूक तो कवर हो गए, ईमान वालों के हुकूक भी कवर हो गए, मुहताज और माजूर इंसानों के हुकूक भी कवर हो गए, लेकिन ऐसे भी तो इंसान होते हैं ना कि जो कि ना ईमान वाले होते हैं, जो ना आपके हमसाए होते हैं, जो कि ना फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, मोहताज माजूर नहीं होते हैं, लेकिन इंसान तो होते हैं ना, बनी नौए आदम में से तो होते हैं ना, तो उनके हुकूक भी तो हैं हमारे ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हैवानात के हुकूक, हैवानात जानवरों के हुकूक। ठीक है, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे वो कुर्बानी के जानवर हो, राइट, तो इन सब ये सारे के सारे हैवानात होते हैं। ठीक है, तो इनके हुकूक, तो स्पेशली हैवानात के हुकूक का मामला ऐसा है कि जो के बड़ों को भी सीखने की जरूरत है, लेकिन ये वाले हुकूक है ना जरा बच्चों को भी सिखा देने चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से ये बहुत देखने में आता है कि बच्चे जो होते हैं वो जानवरों के साथ जरा बुरा सलूक करते हैं। ठीक है, किसी परिंदे को देखा उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया, किसी का घोंसला देखा तो उसको जो है वो पत्थर मारने शुरू कर दी। ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही होती, ठीक है ना। आजकल के जो जो मॉडर्न एडवांस दुनिया है वहाँ के स्कूलों के अंदर ये चीज़ें सिखा देते हैं, तो वो लोग आमतौर पर इस तरह के काम नहीं करते, दूसरे तरीकों से करते हैं, लेकिन आमतौर पर ये नहीं होता कि दरख्त के ऊपर कोई जानवर का घोंसला देखा, परिंदे का घोंसला देखा तो उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, बच्चे इस किस्म की हरकतें करते हैं। कुत्ता गुजर रहा है, कुत्ते को जो है वो मारना शुरू कर दिया, ठीक है, अब खुद ही जो है कुत्ता पलट के काट लेता है बच्चे को, फिर उसकी मौत भी हो जाती है इस वजह से, लेकिन फिर भी ये हरकतें जो होती हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो हैवानात के हकूक हो गए, फिर उसके बाद जो है वो आपके जो नबातात होते हैं, आपने घर के अंदर पौधे रखे हुए हैं, पौधों को जो है उनका ख्याल करना, उनको पानी देना, ठीक है, और वैसे दरख्त मौजूद है, अब बिला किसी ज़रूरत के जो है वो दरख्त को काट देना, भाई दरख्त को उगने में कितने साल लगते हैं, ठीक है, लेकिन अब खामखा में जो है वो जी वो बस मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा जो है वो उसकी वजह से गंदगी होती है तो उसको जो है वो काट दिया। दरख्त का कितना असर होता है इंसान के यानी माहौल के ऊपर असर होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर असर होता है, टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से कम होता है, जो जानवर होते हैं उनको दरख्त से जो है फायदा हासिल होता है, परिंदे जो है वो दरख्त के ऊपर आते हैं, लेकिन बस दरख्त काट दिया उठा कर, ठीक है। तो नबातात के भी हुकूक होते हैं, सही है, जमादात के भी वैसे तो हुकूक होते हैं, जमादात के भी यानी पानी का हक, कि पानी को जो है वो जाया ना किया, ठीक है, और इसके अलावा पत्थर जो है वो इंसानों के रास्ते के ऊपर जो है वो आपने पत्थर नहीं रख दिए, खामखा चलते चलते जो है वो पत्थर को ठोकर मार रहे हैं, ठीक है, तो भाई पत्थर जो है ना ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, और पत्थर की भी के अंदर भी रूह होती है ना, पत्थर भी बात करते हैं, पत्थर भी बात करते हैं, हमें आवाज़ नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती बात, लेकिन वो करते हैं बात। नबी अलैहिस्सलाम का मुअज्जा ये था कि उनको पत्थर की बात भी समझ में आती थी, ये नहीं कि पत्थर बात करता था उनके सामने, नहीं, पत्थर तो हमारे सामने भी बात करता है, हमें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो हर चीज के अंदर रूह रखी हुई है और हर जी रूह का हमारे ऊपर हक है, ठीक है। अब बताएं अगर ये इतने सारे हुकूक हम वाकई अदा करने लगें तो फिर हमारे पास जो है वो एंटार्क्टिका में जा करके जो जुम्मे को बात हुई थी पेंगुइन्स की वीडियो बनाने का टाइम किधर से आएगा, जो कि इन काफिरों के पास है, राइट, काफिरों के पास है, वो कभी आर्कटिक पहुंचे हुए होते हैं, कभी एंटार्क्टिका पहुंचे होते हैं, कभी अमेजोन फॉरेस्ट में पहुंचे होते हैं, वह कभी जो है वो पहाड़ की चोटियां जो है वो सर कर रहे होते हैं, कभी जो है वो बंजी जंपिंग कर रहे होते हैं, कभी दूसरे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है ना कि उनसे कि उनके ऊपर हुकूक आते हैं, वो तो हुकूक को मानते ही नहीं, वो तो हुकूक को जानते ही नहीं, ना जानने की कोशिश करते हैं और ना अदायगी की फिक्र करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो उनसे कयामत के दिन हिसाब होगा। काफिर तो ये सब नहीं करता ना, लेकिन ईमान वाला तो इन सारी चीज़ों को जानता है ना कि भाई उससे हिसाब होगा। अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, राइट, ये हुकूक अदा करने का हुक्म है इस वाली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, इन्नल्लाह यामुरकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म करता है कि हुकूक अदा करो, ठीक है। यहाँ पर एक दो मैसेजेस आए हैं, हमारे मोहल्ले में बिल्ली और कुत्ता रात में ठंड में रोते हैं तो हमें उनकी कैसे मदद करनी चाहिए? बिल्ली और कुत्ता ठंड में रोते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो उनके लिए कुछ शेल्टर टाइप की चीज बना दें, लेकिन वो अब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो ठंडक लगने की वजह से रोते हैं या किसी और वजह से रोते हैं, क्योंकि हमने जो है वो ठंडक के अलावा भी रोते हुए देखा है, सुना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोई एक जगह ऐसी बना दें अगर आपके लिए मुमकिन है, ठीक है, कि वो जो है वहाँ पे जा सकें, वरना ये उनके रोने की फिक्र ना करें। अब इतना भी इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो बिल्ली कुत्ते के ठंड की फिक्र करते रहे। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको जैसा बनाया है ना, तो वो उसका उसके हिसाब से वो फिर उनको पता होता है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जो है वो अपना शेल्टर हासिल करना है, कहाँ से खाना खाना है। माशाल्लाह, हम तो कहते हैं कि यहाँ सऊदी अरब में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतना माल दिया है, इतना पैसा दिया है, इतना जाया करते हैं, बिल्ली कुत्तों को जो है वो मौजें हो जाती हैं। यहाँ पे अलहमदुल्ला कुत्ते तो नहीं होते सड़क के ऊपर, लेकिन बिल्लियाँ तो बहुत होती हैं। तो उनको डस्टबिन के अंदर जा करके इतना खाने को मिलता है कि पता नहीं उनका तो पेट खराब हो जाता होगा, इतना फेंकते हैं इंसान, इतना फेंकते हैं, खाना तो बहुत है ना। बहरहाल, तो अच्छा, कुछ किसी से सुना कि जी बिल्लियां रोती हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि मौत के फरिश्तों को देख करके रोती हैं। ठीक है, तो अब वो मौत का फरिश्ता आ रहा है, इस वजह से बिल्लियां रो रही हैं। तो भाई अल्लाह आलम, हमें क्या पता मौत के फरिश्तों को देखने की वजह से रोती हैं कि नहीं रोती हैं। लेकिन अब इसको किसी वहम और तवहमात का जो है वो ना बना लें, मौत तो हर वक्त आती रहती है। ठीक है, मौत तो हर वक्त आती रहती है, जरूरी नहीं है कि किसी घर में कोई इंसान मरे तभी मौत का फरिश्ता है। मौत का फरिश्ता तो किसी हैवान की जान निकालने के लिए भी आता है। ठीक है, तो अब हैवान तो आप यानी कितने हैवान जो है वो मरते हैं, आपको नजर भी नहीं आते। ठीक है, तो अब वो रो तो हो सकता है। तो भाई आप जो इंसानों के हुकूक है उनको तो अदा करें ना, और जो सामने मौजूद है उनको तो अदा करें। बहरा, किसी ने लिखा के बच्चे पूछ रहे थे कि अगर परिंदों को कैद करना या उनके बच्चों को घोंसले से निकालना गुनाह है, तो जो ये परिंदे हम शॉप से लाते हैं वो लोग भी तो उनको पकड़ कर लाते हैं, और इन परिंदों के बच्चों को, तो ये सब ही गलत है जी। ओरिजिनली उन परिंदों को पकड़ करके लाना उनके वाइल्ड लाइफ में से और उनको जो है ना वो कैद करना, ये ओरिजिनली तो गलत था। ठीक है, लेकिन जब ये परिंदे एक दफा आपके केज बर्ड्स बन जाते हैं ना, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना फिर ये यानी एक होता है केज बर्ड्स, जो कि कई नस्लों से जो है ना वो केजेस के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको जो रखना है ना घर के अंदर, ये इसका जवाज है। ठीक है, तो इसको जो है फिर हमारे अकाबरीन भी रखते हैं, बल्कि एक हदीस मुबारक के मुताबिक एक बच्चे का भी एक पालतू परिंदा था। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम उसके घर पे जाते थे उस बच्चे के, तो उस परिंदे को देखते थे, हत्ता कि एक दिन जो है ना वो उसका जो पालतू परिंदा था वो बच्चे का मर गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से बकाया, अच्छा वो बच्चा भी जो था ना वो नाबीना था, तो उसको पता भी नहीं चला कि उसका परिंदा जो है वो मर गया। नबी अलैहिस्सलाम पूछा, उस हदीस के अल्फाज भी सारे उसको याद रहते थे, या उमेर मा फालन नुमेर, इस तरह का मकाला सल्लल्लाहु कि जैसे उस बच्चे का नाम अगर उमेर था, तो पूछा कि या उमेर मा फालन नुमेर, इस परिंदे ने जो है वो क्या किया। ठीक है, तो बहरहाल यानी इस तरह की पालतू जानवर जो रखना जो है ना ये खिलाफ शरा नहीं है, लेकिन जो जंगल के अंदर रह रहे हों उनको घोंसले से निकाल लेना, उनके बच्चों को घोंसले से निकाल लेना, इसकी भी ममानियत हदीस मुबारका के अंदर आई है। या अबा उमैर मा फ़अला नुमैर नुगैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, या अबा उमैर मा फ़अला नुगैर, ए अबा उमैर, उस बच्चे का जो है वो कुनियत से पुकारा उसको, मा फ़अला नुगैर। ठीक है, तो बहरहाल हम जो है वो इन हकूक का लिहाज रखें, और फिर बाकी तफसीलात जो इंशाल्लाह आपके अगले क्लास के अंदर आप उम्मीद है कि सुन ही लेंगे। फिर इसके बाद आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है किताबुल वसीया वल मीरास। अब इसमें हमने सारी तफसीलात नहीं पढ़नी है इस क्लास के अंदर, ठीक है, तो जो हमने मुनासिब समझी है इस क्लास में, जिनकी ज़रूरत महसूस की है, तो उनको खाली हम पढ़ेंगे पॉइंट्स को। तो वो पेज नंबर 318 से हम पढ़ना शुरू करते हैं, मसला नंबर 1। फरमाते हैं कि ये कहना कि मेरे मरने के बाद मेरा इतना माल फुला आदमी को, जिसमें औरत भी आ जाती है क्योंकि औरत भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही होती है, ठीक है, तो मेरा माल मेरे मरने के बाद इतना जो है ना वो फुला आदमी को या फुला काम के लिए दे दिया जाए। ठीक है, फुला का मतलब होता है कोई इस काम के लिए, ठीक है, जिसका के नाम जिक्र नहीं करते तो उसके लिए उर्दू में फुला कह देते हैं, फुला शख्स। जैसे मस्जिद में जो है वो अतिया दे दिया जाए, या इससे जो है वो कुआं खुदवा दिया जाए, या इससे जो है वो फलाने मदरसे के अंदर किसी बच्चे को कुरान के हिफ्स के लिए स्पॉन्सर कर दिया जाए, तो इस तरह से कह देना जो है ये वसीयत है। मेरे मरने के बाद मेरे इतने माल से ये वाला काम कर दिया जाए या फलाने को दे दिया जाए, ये वसीयत करना कहलाता है, चाहे तंदुरुस्ती की हालत में कहे या बीमारी की हालत में कहे। ठीक है, क्योंकि ये क्यों अलग से कहा जा रहा है तंदुरुस्ती की हालत में या बीमारी की हालत में, क्योंकि इंसान की जो तबीयी मौत होती है वो उमूमन बीमारी के साथ कनेक्ट की जाती है, कि जब बीमार होता है ना तो फिर इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बता दिया कि नहीं, तंदुरुस्ती की हालत में कहे या बीमारी की हालत में कहे, ऐसा कहना जो है वसीयत ही कहलाएगी। और चाहे इसी बीमारी में मर जाए या तंदुरुस्त हो जाए, ठीक है, फिर भी ऐसा कहना जो है वो वसीयत कहलाएगा। ठीक है, यानी मरजुल मौत में ऐसी बात कहे, या ऐसे मर्ज के दौरान कहे जिससे के उसको इफाका हो जाए, यानी वो उसकी मरजुल मौत नहीं थी। ठीक है, मरजुल मौत उस मर्ज को कहते हैं कि जिस मर्ज में इसका इंतकाल हो गया, ठीक है, उसको मरजुल मौत कहते हैं, और जिस मर्ज से ये ठीक हो गया, इफाका हो गया, उसको तंदुरुस्त हो गया, उसको मरजुल मौत नहीं कहते। ठीक है, तो बाद में पता चलता है ना कि ये जो मर्ज था ये मरजुल मौत था कि ये मरजुल मौत नहीं था, पहले तो नहीं पता चलता एग्जैक्टली कि मरना है इसने कि नहीं मरना है। तो इन एनी केस ऐसा कह देना जो है ये वसीयत कहलाता है। और जो खुद अपनी जिंदगी में अपने हाथ से कहीं दे दे या किसी का कर्ज मुआफ कर दे, तो उसका हुक्म ये है कि तंदुरुस्ती में हर तरह से दुरुस्त है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हदिया दे दिया आपने किसी को, हदिया कर देना, हिबा कर देना। ठीक है, कोई चीज आपने किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी, कह दिया कि जी ये आपका है, ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो तंदुरुस्ती में हर तरह से दुरुस्त है, इसी तरह जिस बीमारी से शिफा हो जाए इसमें भी दुरुस्त है। यानी आप बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपने कहा जी ये फलानी चीज जो है ना वो आप ले लें, ठीक है, या ये फलानी चीज जो है वो उसको मैंने दे दी, ठीक है, अब ये उसकी हो गई, तो अब बीमार पड़े हुए हैं बिस्तर के ऊपर, लेकिन आपने दे दिया तो दे दिया, हो गई उसकी, आपने हिबा कर दिया, आपकी मिल्कियत खत्म हो गई। देखें, एक लफ्ज है मिल्कियत, ओनरशिप, ठीक है, मिल्कियत, ये बड़ा अहम लफ्ज है, इंतहाई अहम लफ्ज है। ठीक है, मिल्कियत किसकी मिल्कियत है, ये चीज घर के अंदर जो आपके बर्तन हैं, घर के अंदर आपके कपड़े हैं, घर के अंदर जो है वो, यानी आपके घर में कपड़े हैं, आपके घर में बर्तन हैं, आपके घर में पुरानी चीजें हैं, तो अब वो जो कपड़े और बर्तन और ये सब चीजें, ये किसकी मिल्कियत है ना, हु ओन्स देम। ठीक है, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है हमारे दीन के अंदर। ठीक है, आमतौर पर जो घर के यानी बड़े होते हैं, मर्द होते हैं, वो ही कमाई करते हैं और वही बर्तन खरीद के लाते हैं, या उन्हीं की कमाई से जो है वो औरतें बर्तन खरीद के लाती हैं, उन्हीं की कमाई से जो है वो कपड़े लाए जाते हैं, उन्हीं की कमाई से जो है वो खाना पीने की चीज लाई जाती है, उन्हीं की कमाई से, तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो उन्हीं की मिल्कियत होती है जो कमाई कर रहे होते हैं। लेकिन घर में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी दूसरे शख्स को हदीये में मिली है। ठीक है, जैसे बीवी है वो कमा के नहीं लाती, लेकिन उसको उसकी माँ ने या उसके बाप ने या उसके भाई ने या किसी उसके दोस्त ने, किसी ने भी कोई चीज जो है वो बर्तन जो है वो हदीये में दे दिया। ठीक है, अब ये जो बर्तन घर के अंदर रखा हुआ है ये मर्द की मिल्कियत नहीं है, यानी शौहर की मिल्कियत नहीं है, ये बीवी की मिल्कियत, क्योंकि उसको ये हदीये में मिला है। ठीक है, या उसका कोई कमाई का जरिया था, जैसे औरतें भी जो है वो अलाउड तो है बिजनेस करना, पर्दा फर्ज है, लेकिन पर्दे के साथ जो है वो बिजनेस कर सकती हैं। ठीक है, पर्दे के साथ जो है वो कोई और ऑनलाइन किस्म की कोई सर्विसेज किसी को दे सकती हैं, जिसके नतीजे में, जिसके बदले में उनको कोई पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब वो पैसे जो है वो उनकी मिल्कियत है। ठीक है ना, उस औरत की मिल्कियत है जिसने के जैसे ऑनलाइन किसी को पढ़ा दिया, अरबी पढ़ा दी, कोई साइंस पढ़ा दी, ठीक है, तो जो उसको उसकी उसकी फीस मिल रही है ये औरत की मिल्कियत है क्योंकि उसने कमाया ये, ठीक है ना। अब इससे जो वो खरीद करके घर में लेकर के आएगी ये उस औरत की मिल्कियत होगी, उसके शौहर की मिल्कियत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जी तुम और तुम्हारा माल सारा का सारा तुम्हारे शौहर की मिल्कियत है, नहीं, बल्कि पीछे तो हमने ये तक पढ़ा है कि इवन औलाद, इवन जो के हदीस मौजूद है जिसके अंदर ये अल्फाज है कि तुम और तुम्हारा माल सारा का सारा तुम्हारे बाप की मिल्कियत है, लेकिन उस हदीस की भी हमने तशरीह पढ़ी ना कि ऐसा जो है वो हर केस में नहीं होता। ये जो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ये ताकीदन फरमाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा और बेटे का सारा माल जो है वो बाप की मिल्कियत है, वो जैसे चाहे उसमें से जो है वो ले ले, जैसे चाहे उसके अंदर से खर्च कर दे, नहीं है ऐसा। तो जब बेटे के लिए तो बाकायदा हदीस के अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। बीवी के लिए तो हदीस के अल्फाज भी मौजूद नहीं कि बीवी और उसका जो सारा का सारा माल है वो शौहर की मिल्कियत है, ठीक है। तो मिल्कियत जिसकी है सो उसकी ही है, किसी और की नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये लफ्ज मिल्कियत ये जाने नहीं जाता, ये क्या चीज होती है भाई, मिल्कियत का मतलब क्या होता है भाई, यही नहीं पता हमें, ठीक है ना। अपनी मिल्कियत का पता ना किसी दूसरे की मिल्कियत का पता, सबका सब मेरी मिल्कियत है, राइट, क्योंकि वो मेरे अल्लाह का है ना, अल्लाह जो है वो हर चीज का मालिक है और मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का खलीफा हूँ इस दुनिया के अंदर, इस वजह से हर चीज मेरी मिल्कियत, ठीक है ना। इसी वजह से पड़ोस की कोई चीज उठा करके ले आते हैं और उसको जो है वो अपना माल समझ करके जो है वो अपने घर में रख लेते हैं, राइट। हमारे यहाँ क्या होता है वो बजरी का ट्रक, राइट, किसी के घर में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना तो बजरी का ट्रक यानी वो रेत का जो ट्रक आकर के ना उसके घर के सामने उंडेला जाता है ताकि वहां पे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो, पूरा मोहल्ला जो है ना वहां से बजरी उठा उठा करके लेके जा रहा होता है। ये मोहल्ला अपने पूरे मोहल्ले की मिल्कियत होती है वो बजरी, ठीक है ना। बच्चों को भी बेटा वहां से उठा के ले आओ, किसी के घर जो है वो ईंटें पड़ी हुई हैं तो घर में जो है ना वो कबाब लगाने थे बिहारी कबाब, तो पड़ोस में ईंटें पड़ी हुई थी, बेटा वो ईंटें उठा करके ले आओ बिहारी कबाब लगाने हैं। ये तो हाल है हमारा, सही है नहीं। इल्म ना और इल्म हासिल नहीं करना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, लेकिन इन बुनियादी चीजों का इल्म हमने नहीं हासिल करना, ना बच्चों को सिखाना, ठीक है। आपको भी बहुत सारे तजुर्बे होते रहते हैं, क्या लिखी है लिख रही हैं कि ऐसा भी होता है कि कोई मर्ज मौत बीमारी में तो दे दे, अगर दुरुस्त हो जाए जिसका उसको पता नहीं था कि ठीक होगा बल्कि यकीन था कि मौत हो जाएगी लेकिन तंदुरुस्त हो गया तो वापस ले ले, क्या ये ठीक है भाई, दे दिया तो दे दिया ना वापस ले ले, क्या ये ठीक। अच्छा ये मुफ्ती साहब, ये आप मुफ्ती साहब से पूछेगा, ठीक है। मसला नंबर, अच्छा सॉरी अभी तो पहले ही मसला पूरा नहीं हुआ। तो जो खुद अपनी जिंदगी में अपने हाथ से कहीं दे दे या किसी का कर्ज माफ कर दे तो उसका हुक्म ये है कि तंदुरुस्ती में हर तरह से दुरुस्त है, इसी तरह जिस बीमारी में शिफा हो जाए इसमें भी दुरुस्त है, और जिस बीमारी में मर जाए उसमें ऐसा करना वसीयत है जिसका हुक्म आगे आ रहा है, यानी मर्ज और मौत की हालत में अगर उसने ऐसा कहा है ना तो फिर वो वसीयत कहलाएगा, ठीक है। बाकी किसी सूरत में उसने ऐसा कर दिया है तो उसको जो है ना वो उसी वक्त हो गया, दे दिया उसने किसी को तो वो दूसरे की मिल्कियत होगी, लेकिन अगर मर्ज़ुल मौत के अंदर उसने ऐसा किया है तो फिर वो वसीयत कहलाएगी। वसीयत का मतलब क्या होता है, मरने के बाद दुनिया की जिंदगी के अंदर वसीयत नहीं, वसीयत इन्फोर्स नहीं होती, ठीक है ना, वसीयत सिर्फ कही जाती है, जिंदगी की हालत में मौत से पहले पहले वसीयत की जाती है यानी जुबान से अदा की जाती है या कागज पर लिखी जाती है, ठीक है। इन्फोर्स कब होगी, नाफिज कब होगी, मरने के बाद, क्योंकि ये वसीयत है, ठीक है ना। हिबा हदिया ये जो है वो ये वसीयत नहीं है, ये हिबा है, ये हदिया है, ठीक है, तो ये जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो अब इनका जो सवाल था, कोई मर्ज मौत में दे दे लेकिन अगर दुरुस्त हो जाए, जिसका उसको पता नहीं था कि वो दुरुस्त हो जाएगा, कुछ ठीक होगा, बल्कि यकीन था कि मौत हो जाएगी, उसको यकीन था कि जी मौत हो जाएगी, तो फिर उसने जो है वो वसीयत कर दी ना, मर्जुन मौत का, जब ठीक हो गया तो फिर वापस ले लेके आए, ठीक है मुझे कन्फर्म इसका पता नहीं, ठीक है, तो ये जो है ना बेहतर पता हुआ, मैं देखने या किसी को पूछ। तो मसला नंबर 2, अगर किसी के जिम्मे नमाजें या रोजे या जकात या कसम, ठीक है, यानी अपने ऊपर वो अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा, ठीक है, और रोजा वगैरह का कफारा बाकी रह गया हो, यानी कसम उसने तोड़ दी, तो कसम तोड़ने के बाद क्या करना होता है, कफारा देना होता है, ठीक है, उससे उम्मीद की जाती है कि कसम तोड़ने का जो गुनाह था ना वो माफ हो जाएगा, जिस तरह नमाज छोड़ने का जो गुनाह था वो कफारा अदा करने से माफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ हमारे जैसे जो आलिम बने ना, ठीक है, यानी दुनिया की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई, लेकिन साथ साथ इल्म दीन भी हासिल कर लिया, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना ये मसला पढ़ दिया कि कसम खाने के बाद अगर कफारा दे दिया जाए तो कसम तोड़ी जा सकती है, कसम तोड़ने पर उसका कफारा दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है ना इसका हल क्या निकाला इन्होंने जो है वो, इससे फायदा क्या निकाला कि किसी के ऊपर तोहमत लगाई और साथ साथ कसम भी खा ली, किसी के ऊपर तोहमत लगाई और साथ साथ कसम भी खा ली, अल्लाह की कसम मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा है, ठीक है। अब सुनने वाला तो अरे और वो तो कसम खा रहा है अल्लाह ताला की, इसका मतलब है कि वाकई इसने देखा होगा, ठीक है ना, लेकिन बाद में उन्होंने कफारा दे दिया, राइट। तो क्या जबरदस्त, क्या मजे हैं दीन का इल्म हासिल करने के, कितने फायदे हैं, है ना, कि कसम का कफारा दे दिया, मसले खत्म हो गया, किसी पे तोहमत लगा दी, कसम खा करके तोहमत लगा दी, बाद में कफारा दे दिया, नहीं भाई अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो ऐसे मजाक नहीं चलते, ठीक है, तो ये तमाशा नहीं है कि कसम खाई और उसके बाद फिर तोड़ दी और उसके बाद फिर जो है ना उसका कफारा अदा कर दिया, एंड अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसे तमाशे नहीं होते हैं अल्लाह ताला के साथ, आपके यहाँ चलते होंगे, अल्लाह के यहाँ चलते हैं। बहरहाल कफारा क्या होता है, कफारा जो है वो गुनाह को, एक तो होता है ना कि जी आपने तौबा करी कि अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ कफारा कि आप उसके बदले में जो है ना वो कुछ सदका करते हैं, ठीक है, वो जैसे एक नमाज का कफारा वो शरीयत में सदका फितर, सदका फितर की जितनी भी अमाउंट बनती है तो वो उस नमाज का कफारा कहना कहलाएगा, ठीक है, तो वो अदा करने से यही उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला जो है वो उसकी उस गलती को जो है माफ कर देंगे और उसके ऊपर कोई सजा नहीं होगी। रोजे का कफारा, फर्ज रोजा नहीं रखा तो उसका कफारा भी सदका फितर के बराबर है, सदका फितर की अमाउंट वैसे तो गंदम या जौ या किशमिश की मकदार से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो उसकी कम अज़ कम मकदार है वो गंदम की मकदार होती है, 2.25 किलो गंदम, वो सदका फितर होती है, जितनी भी उसकी इस वक्त जो है वो मार्केट वैल्यू चल रही है 2.25 किलो गंदम की, तो वो सदका फितर होता है, और एक नमाज के बदले में एक सदका फितर। बहरहाल तो मसला ये है कि अगर किसी के जिम्मे नमाजें या रोजे या जकात या कसम और रोजा वगैरह का कफारा बाकी रह गया हो, यानी उसने अदा नहीं किया हो, और इतना माल भी मौजूद हो जिससे ये वाजिबात अदा हो सकें, तो मौत के वक्त इन जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए फिदिया कफारा वगैरह की वसीयत करना ज़रूरी और वाजिब है, ठीक है, वसीयत करना ज़रूरी और वाजिब है कि भाई मैंने इतनी सारी नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने इतने सारे रोज़े नहीं रखे थे, और मैंने उनकी कज़ा भी नहीं करी, मैं उनकी कज़ा नहीं कर सका, ठीक है ना, मेरे ज़िम्मे कज़ा नमाजें हैं इतनी इतनी, और मेरे जिम्मे कज़ा रोज़े हैं इतने इतने, खुसूसन ख़वातीन के जिम्मे जो है वो कज़ा रोज़े हो जाते हैं क्योंकि उनके अयाम वगैरह के मसले की वजह से, और वो रोज़े नहीं रख पाती हैं, और साल में भी जो है वो सुस्ती आ जाती है, या हिसाब नहीं रखा होता, या आजकल तो पता चल रहा है कि ये हैज़ नफास के मसाइल ही पता नहीं थे, तो इस वजह से जो इतने जो है वो कज़ा रोज़े किसी के ऊपर आए हुए हैं, अब वो मरने से पहले नहीं अदा कर सकी तो वसीयत कर दे, ठीक है, कि तो ये वसीयत करना ज़रूरी और वाजिब है। और अगर वसीयत उसने कर दी है तो फिर जो उसके वरसा होंगे तो उनके ऊपर फिर लाजिम होगा कि उसके माल में से 1/3 जो बनता है, 1/3 जो बनता है, तो उसको इस कफारे के लिए अदा करें, फिदिया देना भी इसको कहते हैं, फिदिया देना, और फिदिया एक नमाज का एक सदका फितर के मालियत के बराबर होता है। इसी तरह अगर किसी का कुछ कर्ज हो या कोई अमानत उसके पास रखी हुई हो तो उसकी वसीयत कर देना भी वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, यानी लोगों को बता के जाए कि मेरे ऊपर ये कर्जा है, ये अपनी वसीयत के अंदर लिखवा दे कि मेरे ऊपर ये कर्जा है या मेरे पास ये अमानतें हैं दूसरों की, ठीक है, क्योंकि मर जाएगा किसी को अगर नहीं पता कि इसके पास ये चीज जो थी ये इसकी अपनी मिल्कियत नहीं थी, ये अमानत थी, तो फिर ये जाहिर है वो फिर उसको अदा नहीं कर सकेंगे, वापस नहीं अदा कर सकेंगे अमानत को, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये जो है वो अमानत को गसब करने वाला, कब्जा करने वाला बन जाएगा ना, और इसका जो है वो कितना बड़ा जो है वो अजाब है इसका, कि किसी की किसी चीज को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया उसकी मर्जी के बगैर, तो वसीयत में लिख दे इस बात को, वरना गुनाहगार होगा, और गुनाहगार का मतलब क्या होता है, पिटाई होना, अजाब होना। और अगर किसी का कोई रिश्तेदार गरीब हो और शरीयत की रूह से उसका वारिस ना बन सकता हो, ठीक है, यानी रिश्तेदार गरीब है लेकिन उसके वरसा में से नहीं है, ठीक है, यानी जैसे उसकी जो है वो खाला है, उसके जो है वो भतीजा है, भांजा है, भांजी है, ठीक है, अब ये जो है वो विरासत में इनका हक नहीं होता, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा, और इसके पास बहुत सारी माल दौलत भी है, बड़ा अमीर कबीर इंसान है, तो ऐसी सूरत में उस गरीब रिश्तेदार के लिए कुछ वसीयत करना मुस्तहब है, यानी इसको बहुत सवाब मिलेगा, अगरचे कि अगर नहीं करेगा वसीयत तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर करेगा तो उसको बहुत सवाब मिलेगा, और बाकी लोगों के लिए वसीयत करने करने ना करने का उसको इख्तियार है, यानी गरीब मोहताज रिश्तेदार है तो ये रिश्तेदारों का हक अदा करना हो गया, लेकिन ये फर्ज हक नहीं है, वाजिब हक नहीं है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा सवाब जरूर मिलेगा लेकिन ना करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये फिर इसके अंदर इस मसले नंबर 2 के अंदर 3 पॉइंट्स आ गए, एक तो जो फराइज वाजिबात आपके जिम्मे रह गए हैं, या कसम तोड़ने का कफारा आप अभी तक अदा नहीं किया है तो उनकी वसीयत करना जरूरी और वाजिब है, ये एक पॉइंट हो गया इसके अंदर। दूसरा ये हो गया कि अगर कोई कर्ज और कोई अमानत रखी हुई हो तो उसको वसीयत के अंदर लिखवा दे कि ये मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने अदा करना था, मैं नहीं अदा कर सका, ठीक है, और अमानत थी मेरे ऊपर, मैंने उसको वापस नहीं किया अभी तक, तो वो भी वसीयत के अंदर लिख दे, ठीक है। और तीसरी बात, ये दूसरा पॉइंट था, और तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर बहुत मालदार है और उसके कुछ ऐसे गरीब रिश्तेदार हैं तो मरने से पहले उन गरीब रिश्तेदारों के लिए कुछ वसीयत कर दे, ठीक है, तो ये उसको सवाब, उसके लिए सवाब का काम हो जाएगा। टाइम तो ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे रोकते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर से ये नमाज छोड़ने पे कफारा देने से माफ हो जाती है। जी, फुकहा ने ये लिखा है, और फुकहा जो होता है ना वो अल्लाह ताला की मंशा को और शरीयत की जो मकासद हैं उनको अच्छी तरह समझने वाले होते हैं, तो इस वजह से ये जो कफारा देने से नमाजें माफ हो जाती हैं, ठीक है, और ये कैसे माफ हो जाती हैं, ये अल्लाह ताला माफ कर दे, ठीक है, तो अब हम बंदा होने के नस्बत से, बंदे होने की वजह से हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हुए कफारा अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नमाजों के छोड़ी हुई नमाजों को माफ कर देंगे, ठीक है, ये फर्ज नमाज ही की बात हो रही है, नफिल नमाज को थोड़ी माफ करवानी होती है, ठीक है ना। अच्छा, नमाजें जो होती हैं ना वो दिन के अंदर 6 नमाजें होती हैं, पांच नमाजें फर्ज होती हैं और छठी नमाज जो होती है ना वो वितर वाजिब होती है। तो इस वजह से कफारे का जो हिसाब किया जाता है वो दिन में छह नमाजों के हिसाब से किया जाता है, ठीक है, पांच नमाजों के नहीं, छह नमाजों के हिसाब से। तो छह सदका फितर पर डे, ठीक, अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है बाय द वे। तो ये सोच के नहीं चले जाइएगा दुनिया से कि जी कोई बात नहीं, बहुत सारा अमाउंट बन जाता है, करोड़ों में भी बन जाता है अगर कई सालों का ये मामला बन जाए तो। अब ये जो मसाइल है ना, ये पहले कह दिया था कि भाई ये मुफ्ती आजाद से पूछना होगा और टाइम भी ख़त्म हो गया है। बुजुर्ग के रोज़े छोड़ छूट जाने से भी कफारा देना पड़ता है, बुजुर्ग के रोज़े, बुजुर्ग जो है वसीयत करके गए तब ना, उन्होंने वसीयत ही नहीं करी है तो। उसके अलग तफसीलात हैं जो कि रोज़े के मसाइल के अंदर आपने पढ़े होंगे कि जो बिल्कुल यानी मर्ज बहुत ही ज़्यादा ऐसी हालत में जब बुजुर्ग पहुंच जाते हैं जब वो रोज़े नहीं रख सकते, तो जो जानबूझकर ये सोचकर ना पढ़ें या कज़ा ना करें कि कफ़ारा दे देंगे तो ये सही है, नहीं बिल्कुल भी सही नहीं। और अगर बचपन में कसम खाएं खाई हो और याद भी ना नहीं हो, अब क्या करेंगे अगर तोड़ी है। बचपन में अगर आप नाबालिग थी तो नाबालिग के ऊपर तो शरीयत के अहकाम नहीं नहीं आते हैं, तो उस वक्त की कसम को तो खैर है, लेकिन उसके बाद जो है फिर अगर कसम खाई थी अल्लाह के नाम की कसम, ठीक है, तो अल्लाह के नाम के साथ अगर कसम खाई थी तो फिर उसका कफारा देना पड़ेगा, दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।